सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस व्याकरण के अंदर जो कातंत्र व्याकरण कही जाती है अत्यंत सरल और आप सुविधापूर्वक इसे समझ सकते हैं, इसमें आपने धीरे धीरे करके 34 सूत्रों को पूर्ण किया, जिसमें 22 सूत्र तो संज्ञा प्रकरण में गए हैं और उसके बाद हम 12 सूत्रों में और आगे आए हैं। स्वर संधि, स्वर और स्वर को मिला करके जो शब्दों की पूर्णता होती है उसको कहते हैं स्वर संधि। तो कल आपने जाना कि री को अर कैसे होता है और री को आर विशेष प्रसंग में यहाँ पर हुआ तो ऋणारणम प्रारणम भसनारणम वत्सतराणम कम्बलारणम दशारणम इनकी संधि हुई थी। आपको यदि इसको भूल भी जाते हैं तो आपको encyclopediajainism.com में सर्च करके और संस्कृत व्याकरण की क्लास के सारे ऑडियो प्रवचन मिल जाएंगे, उसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से वो विषय पक्का हो जाएगा। अब आगे देखिएगा कि जो हमने आपको पीडीएफ भेज रखा है सॉफ्ट मैटर, उसमें पेज नंबर 14 पर शीत प्लस रीताहा दुख प्लस रीताहा, तो अब इसमें थोड़ा सा विशेष नियम आया है। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें समास का प्रकरण है इसलिए इनका विग्रह होगा शीते रीताहा। समास का प्रकरण एक आएगा आगे, तो यहां पर विशेष नहीं समझना है, आपको ये जानना है कि शीत प्लस रीताहा कैसे, तो उसका विग्रह किया है शीते रीताहा माने तृतीय विभक्ति इसमें लिखा लगाई है। शीत से माने ठंडक से जो दुखी है शीतार्ता, ये ऐसा बनेगा दुखे रीताहा शीते रीताहा। ये केवल समास का ज्ञान कराने के लिए प्रारंभ में यहाँ जो विशेष नियम संधि में भी आ रहा है उसको दर्शाया है। समास का प्रकरण आपका आगे चलेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें तृतीय समास है, किसमें कर्मधारय समास है, किसमें तत्पुरुष समास है, ये बात मैं यहाँ पर अभी विस्तार नहीं करूंगी। तो आपको जानना है कि यहाँ दुख प्लस रीताहा है और शीत प्लस रीताहा ये आया है, शीत प्लस रीताहा। तो इसमें से पहले तो अनतिक्रमण विश्लेषी से हमने अलग अलग सब शब्दों को किया, इसमें देखो शीत में हलंत और फिर उसके आ को निकाल दिया, फिर रीताहा। तो अब इसमें जो विशेष नियम लगा कि समास का प्रकरण होने से यहाँ पर टा विभक्ति आ जाती है शीत के साथ, खैर वो तो अलग नियम है। तो यानी कि उसमें ये बताया कि समास के प्रकरण में तत्स्था लोप्या विभक्तया यानी विभक्ति का तो लोप कर दिया, टा विभक्ति से शीतेन बनता है इनटा, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। तो उस टा विभक्ति का लोप हो गया, फिर रहा शीत प्लस रीताहा, तो रिवर्ण अर से शीत अ और रीता, तो शीत अर री के आने पर आ को अर हो जाता है। आपको इसमें बताना है कि आ को अर हो गया और री का लोप हो गया। देखिएगा कि शीत में आ जो निकला था इस री के आने पर आ को अर हुआ पहले और री का लोप हो गया, तो शीत अर प्लस तह बचा। अब उसके बाद में नियम एक अलग लगा, अभी ये पूरा नहीं हुआ। अब इसमें नियम लगा रितेचा तृतीया समासे, रितेचा तृतीया समासे, रितेचा तृतीया समासे, यानी यहाँ इस नियम को इसलिए बताया कि तृतीया समास के प्रकरण में रिवर्ण के आने पर अर को दीर्घ हो जाता है माने अर को आर हो जाता है, तो शीत आर प्लस कहा तो शीतार्ता बन गया। अब शीतार्ता जहां बना तो आप समझो कि शीत से जो दुखी यानी कि तृतीय विभक्ति लगी से में तृतीय आती है, तो शीते रीता माने शीत ठंडक से जो कष्ट में है, तो शीतार्ता ऐसा बन गया। री को अर होना था तो विशेष नियम से आर हो गया। ऐसे ही दुखे रीता तो दुख प्लस कह रीता लिखना चाहिए है। दुख प्लस रीता होना चाहिए था इसमें, और फिर इसको दुख प्लस आ इसमें निकाल दिया, आ आ निकला फिर का रीता, तो ये जो है दुख आ और दुख आ को अर हो गया अभी के आने पर, तो दुखरता बन गया। लेकिन रीतेचा तृतीया समास से इसमें भी री को आर हो गया, यानी अर को आर हो गया, तो ये और तह क्योंकि री का लोप हो गया है तो आर तह तो दुखार्थ बन गया। अब आप कहें कि ऐसा क्यों कहा, आगे तुरंत उसमें कहते हैं कि तृतीया समास में है ऐसा क्यों कहा, तो कहें कर्मधारय समास में नहीं होगा, यानी परमस चासो रितश्च परमर्थ बनेगा। तो वहां पर कर्मधारय समास है तो उसमें री को आर नहीं हुआ, उसमें अर ही हुआ, तो परमस चासो रितः परमर्थ बन गया, परमर्थ वहां पर री को आर नहीं हुआ। इस प्रकार से ये विशेष नियम कहीं कहीं तो आएंगे ही, इसलिए आपको व्याकरण के पूरे नियमों की जानकारी करके पुनः पुनः इसका अभ्यास करते हुए अपने ज्ञान को समुन्नत बनाना है और व्याकरण के ज्ञान में परिपक्व होना है। अब हम चलते हैं।